सुतं देवं कंस चारु रमदनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः मेरे जीवन को जो मोड़े ऐसे मोहे संत मिले मेरे जीवन को जो मोड़े ऐसे मोहे संत मिले
भटक भटक मार्ग नहीं मिलता
भटक भटक
विषयों में मेरा मन है फिरता
अमन है
दुर्लभ जग में संत समागम
दशा तो बदलने वाली है, आप बदलने वाले नहीं हो, भगवान बदलने वाले नहीं है, तो संबंध बदलने वाला नहीं है, हर दशा रहने वाली नहीं, प्रतिक्षण बदलती हो। इस दशा को क्या राजी क्या नाराजी हो, हमारी भक्ति बढ़ी नहीं बढ़ी, प्रेम बना नहीं बना, भगवान खींचा हुआ नहीं हुआ, संसार को खींचा हुआ हो गया, शोक आ गया आ गया, चिंता आ गई आ गई, ये तो दशा है बदलने वाली। यूं गुरु के शब्द ये दशा हो गया, हमका हमारा असली क्या है, हमारा असली संबंध भगवान के साथ, भगवान रहने वाले हम रहने वाले या शहीद रहने वाले है, ये हड्डे दिन सूर्य शहीद रहने वाले हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, हमारा संबंध अटल है। कि वो संबंध कर दो, साधन होता है नहीं होता ध्यान दे, भजन होता है नहीं होता, कम होता है ज्यादा, ज्यादा ध्यान नहीं देना, इसका अर्थ होते समझे भजन करना कीर्तन करना जब करना ये करना है, परंतु वास्तव में ध्यान देना है अपने पर, भगवान का हमारा संबंध अटल है। घर का बालक काम करे तो बालक है, काम नहीं करे तो घर का आदमी नहीं है क्या, पैदा करके पैसा लावे तो हमारा लड़का, और खर्च कर जावे घाटा खा जाए तो हमारा लड़का नहीं हो गया, वो जान कर उदंदा करके पैसा वनाश करे तो भी लड़का तो अपना है एक, तो हम कैसे ही कपूत हैं भगवान, कैसे ही है कपूत सपूत हो सकते, अपूत नहीं हो सकते, पूत नहीं, ये नहीं हो सकता, हो सकता है दशा है इस पर अच्छे मन को नहीं पता, खास देखिए बहुत ये बात ऐसे ही लोगों ने बताई अवस्था को देखते अच्छा। रात में आप पास आता था सोता कर दिया मुझे, सुबह मुझे एक आदमी में बोन लग कर इतने खुश रहे, जिस तब तक ज्ञान कहते नहीं थे लग सकते, मैंने आपको आदर नहीं किया, मैंने आपको समझा नहीं, उस समय वहां पर मैं तो मानते ही नहीं रहा, अपराध कोई तुमने किया ही नहीं आगे समय कि मेरे मन बसा रहा है, मन आदर नहीं किया, वैसे पाप कर रहा है, तो यह एक चीज है बाहर में चलवाए तो चले कहना, ये तो और बदला भी रहेगा, कभी घबरा रहे कभी ठीक हो जाए, कभी बड़ी हो जाए ठीक हो जाए, कभी बहुत मरना सुन हो जाए, कभी बहुत ठीक भी हो जाए, तो बदलने वाले इन क्या थी रहना होता है, अब आवे नहीं समझ में दशा है तो बदलती है, कभी सुख ना आ जाए, कभी नींद आ जाए, कभी जम जाए, ये तो बदलने वाला है, भगवान के हमारे हमारे भगवान ये बदलने वाले धीरे धीरे, तो नहीं बदलने वाली तो दृष्टिया समन्व सर्वेश भूते तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तम यह पश्यति सपश्य, समम पश्चन ये सर्वत्र समम अवस्थित ईश्वर, संबंध हमारा वो सम है, न हिंसी आत्मा न आत्मा न, वो अपने हिंसा नहीं है, व्याख्या नहीं जाता ऐसा परम गति हो जाता है, फिर सब बदलने वाले समम सर्वेश भूते तिष्ठन्तम परमेश्वर, तेरह अध्याय 27-28 में देखते हो, समम सर्वेश भूते तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यन्तम, दशाओं का शब्द में अपना संबंध अटल है, विनश्यसु अविनश्यन्तम यह पश्यति सपश्य, कोई ठीक नहीं दशा हो ठीक ही बोल रहा आदमी चिंता नहीं होगी, आ गया चिंता आने दे शोक आ गया आने दे, क्यों आ गया ये मतलब चिंता आई क्यों आ गई ये मतलब आ गई चली जाएगी, अरे आई हो चली जाएगी, आप विचार करो कि कोई भी उत्पन्न होने वाली वस्तु स्थिर नहीं है क्या, तुम ये खरीदे तो नष्ट होती है, अब चिंता हुई तो नष्ट होगी, शोक आए तो नष्ट हो जाए, तो घबराहट आई तो नष्ट होगी, ये तो उत्पन्न होने वाली पैदा होने वाली चीज सदा नष्ट होती है, इसकी क्या चिंता करे, क्या डाली है, खुशी आएगी लाभ हो गया सा लाख रुपये फायदा हो गया खुशी आएगी, तो ये खुशी कौन से रहने वाली भाई, रुपये कौन से रहने वाला है, सही कौन से रहने वाला है, इसमें क्या खुशी है, न ब्रिटिश स्त्री भी प्राप्त है न विदेश प्राप्त क्या आपकी है, स्थिर मुद्रे समूह है धन मुद्रे का न ब्रिटिश स्त्री भी प्राप्त है प्राप्त अर्थ भी क्या हो, अरे हो गए तो हो गए अर्थ तो होगा,
ये तो समता की दृष्टि,
अरे दृष्टि कुछ भी हो जाए तुम समझा हो तो समझदारी दृष्टि नहीं है भाई, सब है एक तो समता तो बिल्कुल सरल है, कैसे दुख आओ वह समय तुम रह रही हो, दुख आओ सुख आओ तो रह रही हो, अच्छा संपत्ति आओ तुम रह रही हो, विपत्ति आओ तुम रह रही हो, बहुत अजय बीमार हो गया ज्यादा इस बुरी तुम रहते हुए और ठीक हो गया अब खेले तुम लोग पूरे तुम रहते हुए और तुम तो अभी सब देख अच्छी सब बड़ी ऊंची होगी और कुछ नहीं सीधी है सब बिल्कुल
मैं तो रहती हूँ
तो समय हुई ना
मैं तो रही
अरे समय तो हुई बड़े
हाँ वो तो ठीक है
तो वो ठीक नहीं वही
थोड़ी रही
वृत्ति कभी रहने वाली कभी रहने वाली वृत्ति सब नहीं है प्रकाशन से पूर्वतिम से वो मेरे से पांडव न दृष्टि संकीर्ता नहीं न निवृत्ता नहीं कांक्षा थी पुनः देखते लक्ष्मण याद है ना कि 22 श्लोक है 14 तो प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह तो ज्ञानी महात्मा भी हो रहे हैं क्या बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं ना तो क्या नहीं बात होगी तो तुम जीवन मुग्ध हो उनकी बदल रहे क्या पर उसमें राग द्वेष नहीं करते मन उसमें हर्षोग नहीं करते चिपकते हैं
अगर अपने मन में किसी के प्रति कोई बैर अपन ऐसे धार के चलेंगे मेरे तो किसी के प्रति बैर नहीं होगा किसी को कुछ बोल दू तो उसको कुछ में कुछ हानि नहीं होगी
कुछ नहीं है कुछ नहीं है
कुछ लोग भले कुछ भी बोलो
लोग वो कुछ भी तेरे मन में बैर नहीं चाहिए
हाँ मेरे
को पकड़ मत बैर
नहीं मैं नहीं पकड़
बस 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 बरवानी कुछ भी हो कुछ भी हो तेरे भाव जो करो बोलो बोलो तुम बताएंगे बैर के अपने बोल नहीं सकते ठीक है क्षमता इसी नहीं होता क्षम तो है सोचे हम लोग कल्याण का काम करते थे गोरखपुर में तो हमारे साथ आई उनको मैंने कहा तो वो कहते एक बात हो गई अब वहाँ कमरे में बैठे थे अब ऑफिस में आकर में बैठ गए तो देश बदल गया काल बदल गया बात बदल गई आप बदल गए अब तो वही है तो वही है उनमें से ना सम दुख
सुखा
तो भी वही है सम दुख सुखा स्वस्थ स्व में स्थित होना कहना समझा और स्व में स्थित न हो पुरुष सुख दुख आराम भोग देते हैं कौन पुरुष प्रकृति स्थित होगी प्रकृति
बुद्धि से देखना चाहिए
बुद्धि से खुद से रहना चाहिए बुद्धि से नहीं बुद्धि दृष्टि से भी कोई काम नहीं खुद खुद की दृष्टि से खुद जो है उस दृष्टि से
खुद को किस दृष्टि से देखना
खुद हूँ बस और कुछ नहीं देखना हूँ और दम हमें तो वैसे ही है ये खुद ही देखते
हम तो बचपन में भी थे हम तो अभी भी है और आगे भी
रहेंगे रहे सही बदलता है और की परिस्थिति बदलती है सही हो जो होते हैं बदलता है ये
अब बदल
सही जीवन भी तो होता है जिनको जीवन लगते थे समझा कहते हैं व्यवस्था है
समझ में तो आती है
समझ में आ गई आती है नहीं समझ में तो नहीं आ गई है तो वो तो हो गई है तो है ही अब मैं बताऊँ हुई नहीं है ये तो थी ही पहले ख्याल नहीं था ये कभी बदली है क्या ख्याल नहीं था ये तो है पहले ही है आ गई अब नहीं नहीं थोड़ी होगी
आप बोलो लाद की जान
लाद की लाद की पहले ही है ना ठीक है ना समझ हो जाओ पूर्ण है हम तो हमारे में अपूर्ण है ही अब बोलो बात
ये प्रकृति का आयुष है
और इसमें जो चेतन जीवात्मा चेतन है वो परमात्मा का आयुष है। तो ये बीच में है, एक तरफ प्रकृति एक तरफ परमात्मा। तो ये जब तक इन नाशवान चीजों में फंसा रहेगा तब तो ये दुख ही पाएगा। कारण उसका ये है, ये संसार की चीजें जो प्रकृति से पैदा हुई है ये कभी स्थिर नहीं रहती, हरदम ही चलती रहती है। आपके हमारे जितने ये शरीर दिखते हैं ये शरीर हर समय जा रहे हैं। हम तो समझते हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं, पर रहने का तो वहम है और जाने की बात सच्ची है। सब जीव जंतु मनुष्य आदि मौत की तरफ जा रहे हैं। जिस दिन जन्मे तभी से मौत की तरफ जा रहे हैं। 5 वर्ष का बालक हुआ तो 5 वर्ष मौत के नजीक हो गया, चाहे वह 80-90 वर्ष का होने वाला है, पर जितना वर्ष उसको आ गए हैं उतने वर्ष तो उसके खत्म हो गए, बाकी रहे उतने वर्ष आड़ में है, मौत में अगर मृत्यु है मरना है। प्रत्येक सांस में मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। जैसे प्राणी सब मौत की तरफ जा रहे हैं ऐसे ये सृष्टि प्रलय की तरफ जा रही है। और प्रलय और स्वर्ग, प्रलय और स्वर्ग होते होते महाप्रलय की तरफ जा रही है, ये नाश की तरफ जा रही है, कभी भी स्थिर नहीं रहती। ये सब सृष्टि जा रही है, इसके साथ हम स्नेह रखेंगे अपनापन करेंगे तो दुख पाना पड़ेगा। कारण कि ये स्वयं जीवात्मा है, वो परमात्मा का अंश है, इसका तो नाश होता नहीं। और जिन जिन चीजों को ये अपनी सुखदायी समझेगा वे उसका नाश होता चला जाएगा। तो आफत ही आफत रहेगी, कभी आफत मिटेगी नहीं। अगर ये प्रभु के चरणों के शरण हो जाए तो इसका दुख मिट जाए, क्योंकि परमात्मा भी रहने वाले, ये भी रहने वाला, संसार भी जाने वाला और शरीर भी जाने वाला। तो जाने वाले से विमुख और भगवान के सन्मुख हो जाए तो सदा आनंद हो जाए, फिर उसका वियोग नहीं होगा, सदा भगवान के साथ रहेगा। क्यों, ये भी रहने वाला और भगवान भी रहने वाला, और संसार और शरीर ये जाने वाले। तो इनका तो काम धंधा कर दो, सेवा कर दो, परंतु इनसे लेने की इच्छा ये मत रखो कि हमें कुछ निहाल कर देगा। निहाल क्या करेगा, स्वयं नष्ट होने वाला, हमारे क्या निहाल करेगा, कितना दिन करेगा। जैसे कोयला होता है, वो जब अग्नि से अलग हो जाता है तो काला हो जाता है। उस काले कोयले को कोई साफ करना चाहे तो साबुन लगाओ इसको साफ करने, तो आया है कि कोयला होने उजला 100 मन साबुन लगाए, 100 मन साबुन लगा दे तो क्या वो सफेद हो जाएगा, नहीं होगा। तो वो काला कब पड़ा, कि जो ही अग्नि से अलग हुआ त्यों ही काला पड़ा। तो वो कालापन कब मिटेगा, आग में धर दो वो चमक उठेगा, आग में धरते ही वो चमक उठेगा, उन कालापना मिट जाएगा। ऐसे ये जीव जो संसारी हो गया, परमात्मा से विमुख हो गया, अलग तो ये हो नहीं सकता परंतु विमुख हो गया, तो विमुख होने से ये दुखी है। ये कितना ही संसार की संपत्ति वैभव धन मिल जाए, बहुत बड़ा पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, इंद्रासन पर चला जाए, त्रिलोकी का राजा हो जाए, तो भी भगवान से विमुख रहेगा तब तक इसका दुख नहीं मिटेगा, कालापन नहीं मिटेगा। और भगवान के सन्मुख हो जाए तो भगवान के सन्मुख होते ही भगवान में तो है ही, भगवान तो सब जगह परिपूर्ण है, तो भगवान में होते ही चमक उठेगा। ये जो बड़े बड़े धाम बने हैं, तो यहाँ संत हुए बहुत बड़े अच्छे महापुरुष, भजन स्मरण करने वाले, तो भगवान में मन लगाने से भी इतने बड़े हो गए। इनके लिए हजारों लाखों आदमी भी सुख पाते हैं, शिक्षा पाते हैं, और नजर कितने दिन पाते रहेंगे। महाराज की दीक्षा का सम बताता है, हरिया सम्मत सत्र से बड़ सही को जान, तिथ तेरस आषाढ़ बद सदूर पड़ी किसान। तो 17 साल का सही का तो 18 साल सम्मत, उस आषाढ़ बद 13 के दिन आपने दीक्षा ली साधु बने। तो आज 200 से अधिक वर्ष हो गए, इनमें सैकड़ों हजारों ही तो संत हो गए साधु आश्रम में, हजारों ही लाखों ही गृहस्थ हो गए जो शिक्षा लेकर के परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। अभी भी भगवत स्मरण आदि चल रहा है, तो वो शक्ति क्या है? वो शक्ति भगवान की है। भगवान के सन्मुख होते ही ये इतना बड़ा प्रभाव है और सब सुखी हो रहे हैं। बड़े बड़े साधु हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे वृद्ध त्यागी महात्मा हुए हैं, और 2500 से मानो 2030 और 36 वर्ष हो गए, 236। तो आप समझो कितने संत हो गए। ये जो प्रभाव है, आज भी इस जगह का प्रभाव है, शांति से बैठा जाए तो यहाँ पर बड़ी शांति, चुपचाप बैठो तो पता लगे बड़ी शांति है यहाँ। एक दिन की बात है, हम लोग रामेश्वर से आ रहे थे, तो ये हरिकाराम जी महाराज संत है ना, यहाँ रहने वाले जानने वाले हैं, तो रामसर से आए तो पहले नापासुर के मार्ग पड़ गए, फिर भी नापासुर का मार्ग है तो मार्ग छोड़ करके चलो सिंधु का मार्ग रह गया। रात थी, उसमें रात में आते आते मैंने इनसे पूछा कि महाराज सिंधु की सीमा आ गई क्या? तो हाँ, ये सिंधु की सीमा आई। तो हम चलते चलते आए तो सिंधु साहब, मैंने पूछा किस लिए था कि वहां आते ही लक्षण शांति मालूम भी सीमा में आते ही सिंधु की सीमा आ गई क्या? हाँ, ये आई आई। तो सीमा में शांति, ये क्या है? ये भगवान का प्रभाव, भगवान के भजन में लगते ही खुद को मिले शांति, जिसमें कहना क्या है, औरों को एक और शांति मिलेगी, क्योंकि वो कोयला तो था काला परंतु आग के साथ में हो गया, उसे विशुद्ध से काला हुआ, उसमें जाते ही चमक उड़ता है। तो ऐसे आप जितने भाई बहन हैं, छोटे से छोटा, अपर से अपर, पापी से पापी भी सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चल पड़े तो भगवान उसको भी हृदय लगाने के लिए तैयार बैठे हरदम। ये नहीं कि इतना दिन ये विमुख रहा तो अब हमारे सम्मुख नहीं हो सकता। जैसे कोई 6 महीना भी गुफा में रहे सूरज को न देखे, तो जिस दिन आप सूरज को देखेगा तो सूरज नहीं कहेगा छह महीना तैने नहीं देगा तो छह महीना मैं भी नहीं दिखूंगा, ऐसा होगा? वो जब देखना चाहे तो सूरज दिखेगा, चाहे 12 वर्ष न देखे और वो देखे तो भी दिख जाए। ऐसे भगवान के विमुख लाखों जन्म हो गए परंतु सन्मुख हुए थे मुझे जब ही कि जन्म को देखना से तब है। जब सन्मुख हो जाए तभी भगवान की कृपा करने तैयार। भगवान की कृपा तो हरदम है ही, जीव ही विमुख हुआ है तो ये सन्मुख हो जाए। सन्मुख होना क्या है कि अब भगवान भजन करना है, अपना जीवन अब बाकी जितना है भगवान के चरणों में लगाना है, भगवान को याद करना है, भगवान में ही लगना है। ऐसा पक्का विचार कर लिया तो भगवान के सन्मुख हो गए। तो आज से हम लोग पक्का विचार कर लें कि भगवान की तरफ चलना इस विचार का बड़ा भारी महत्व है। आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ के लोग मेरे को तो जानते तो हैं, बहुत वर्षों से है मैं आता हूँ, यहाँ आऊंगा हूँ, साधु हुआ हूँ, 70 वर्ष से ऊपर हो गए साधु के। ये मकान उगान तो और तरह के बन गए, पहले और तरह के थे, मैं याद तो मेरे एक धारणा थी कि भजन करने से बड़ा होता है और बहुत वर्षों ये रही। इसे सत्संग के द्वारा सब शास्त्रों के द्वारा एक हमें ज्ञान हुआ, एक हमें समझ आई क्या कि भजन से तो पवित्र होता ही है परंतु पक्का विचार कर ले कि मेरे को भगवान की तरफ कुछ करना है, उस विचार से महान पवित्रता आ जाती है। बारिश गाल में एक कथा आती है, एक आदमी ने 99 हत्या कर दी मनुष्य मार दी और जनवर गिनती। तो वो एक पंडित से पूछा, उसने सुन लिया कि हत्या करने वाले की बड़ी दुर्गति दुर्दशा होती। पूछा महाराज मेरा उद्धार हो सकता है क्या, मैंने 99 आदमी मारे। वो कहते राम 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 राम, ऐसे दोस्त के अभी दर्शन हो गए, ऐसा किया तो उसको भी मार दी। घृणा करता है मेरे से, 100 हो गई संख्या पूरी। एक संत मिले, उनसे जाकर उनसे विचार आया, बोले तो पाप उतारने के लिए आप, फिर पाप कर लिया मैंने तो। उनसे पूछा, उनसे कहा कि महाराज ऐसी मेरी दशा है, पंडित जी से प्रश्न किया तो मैंने तो उनको भी मार दिया। तो संत ने कहा भाई उद्धार हो तो सकता है तेरा, परंतु अनु जगह एक महात्मा रहते हैं संत, उनके तू चरणों में चला जा और उनकी कृपा से उद्धार हो जाएगा। तो बहुत ठीक है, परंतु संत ने कहा तेरी उम्र थोड़ी रह गई है, जल्दी भाग कर चला जा और चरणों में गिर जा कर महाराज रक्षा करो तो उनकी कृपा से हो जाएगा। तो वो भागा, भागते भागते जिस गांव में संत गांव के बाहर कुटिया में रहते थे उसकी सीमा में गया, वहां पड़ गया। जब राज के दूत आए भगवान के पास भाग गए, जैसे अजामिल की बात आवे इस तरह से वो बात आई है, उनको भगा दिया और भगवान के पार्षदों ने उसको ले ली, छुड़ा दिया। वो कह रहे बहुत पाप किया, कि पाप तो किया परंतु इसने निश्चय क्या किया, अब मैं अपना कल्याण करूं और संतों के सन्मुख हो गया, ये नरक नहीं जा सकता, उद्धार हो गया।
तो भजन करने से पवित्र होता है ये बात तो प्रसिद्ध है ही, परंतु पक्का विचार कर ले पापी से पापी भी, बस अब मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा, केवल भगवान की तरफ चलूंगा, इस भाव से वो पवित्र हो जाता है। कारण कि रहत न प्रभु चित सुख किए की करत सुरत सेवा रहिए की, भगवान को सुख की हुई याद नहीं रहती। ये माता है जानती है कि बालक कितना ही कसूर करे और माँ को बड़ी रीस आ जाए और पकड़े मारने लगे और वो रो गए माँ का, अब मैं नहीं करूंगा, जब ठंडी हो जाए अब क्या रो गए स्वराब जाएगी। ऐसे एक जन्म की माँ में भी इतनी दया, सदा की माँ है उसको, भगवान हमारी सदा की माँ, सदा की माँ है माता पिता को। अरे गोस्वामी महाराज कहते हैं प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान की मूर्ति कृपामय मानो, कृपा से ही बना हुआ शरीर है भगवान, भगवान कृपामय है। तो कह रहे हैं ना मैं आपका वजन हूँ, आपकी तरफ से लोग मैं तो बस आपका ही हूँ, ऐसा पक्का विचार हो जाए तो सन्म बोल दियो मुझे जब के जन्म कोटि अग्नाशिंग तब ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, कोटि विप्र अग ला गई जाई आये शरण तजो नहीं था। भगवान कहते हैं क्रूर ब्रह्म त्याग हो जाए पर मेरे शरण आ जाए तो मैं उनका त्याग नहीं करता, क्योंकि कोई शरण आ जाए, भाई हो बहन हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो पापी हो पुण्यात्मा हो कोई ज्ञान हो तो कैसी बढ़िया बात है, अपने तो पहले से हैं ही और कोई नहीं हो तो ऐसा मान ले आज से ही भगवान का भजन करेंगे हम तो, बस भगवान की तरफ ही चलेंगे। कहते तो घर का काम काज, घर का काम काज नहीं भगवान का काम काज करेंगे, घर को भी भगवान का समझे, बाल बच्चों को कुटुंब को घर को जमीन को खेतों को मकानों को और अपने संपत्ति वैभव को भगवान का समझेंगे, भगवान का है। अपने तो माना है कि मेरा है, आपसे पहले अपने पिता मेरा मानते दादा मेरा मानते थे, आपके बाद में आपके छोरा मेरा मानेंगे, तो ये तो मेरा अपने बदलता है भाई, भगवान का ये बात तो बदलती नहीं, ये बदलेगी नहीं, तो भगवान का तो है ही, तो ये भगवान का सब संसार है, भगवान का है, तो काम धंधा करो उसमें कृपा करो, मेरा घर मत मानो, भगवान का राम जी का घर है उसे काम करो, भगवान का ही काम करो, तो आपका काम धंधा सब का सब भजन हो जाएगा, भजन ही करता हूँ, ऐसा पक्का विचार कर ले तो बस अपना जीवन महान पवित्र शुद्ध निर्मल हो जाए, हो गया निर्मल, बस विचार करते भगवान के चरणों के शरण लेते उसका जीवन और हो जाता, ये बात कितनी बढ़िया बात, तो सीधी बात है। अब भजन करो बस, जैसे आदमी रास्ता भूल जाए भटकते भटकते रात पड़ जाए, रात में घर पर आ जाए तो कहते कोई बात नहीं भूले भटके घर पर आ गए, अभी रसोई भी नहीं बनी है रोटी भी नहीं खाई है पर तो मन में एक संतोष हो जाता है कि घर पर आ गए अब कोई चिंता नहीं, ऐसे ही भगवान के आम है तो भगवान के चरणों में शरण आ गए अब कोई चिंता नहीं, अब भजन अब घर पर आ गए रोटी बनाओ खाओ तुम बोल सकते, अब भजन स्मरण कीर्तन हरदम भगवान की बात भगवान की चर्चा ही करनी है, अपने तो घर पर आ गए मौज हो गया अपने असली घर पर, तो भगवान का ये जीवन भगवान के सन्म हो गया, ये तो असली घर है अपना, और घर कौन सा ये और बड़ा भारी घर भगवान का ही, तो ये बात अब वे कहते हैं कि अब इतने ही बोलो आगे ना पास में बोलना है शहर में बोलना है
राम 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 सीता राम। जानते नहीं, सुनी है और कुछ हम पढ़ी है। विचार किया जाए तो गावो विश्व से मात्र है, मात्र दुनिया की माँ है, और प्रत्यक्ष भी हम देखते हैं तो वैद्य लोग भी कहते हैं सद्या बल धर्म पर दूध है, उद्योग अन्न नहीं ले सके बीमारे दूध है, दूध बहुत जल्दी बल देने वाला है, और दूध वो गाय का ही है, दूध है ये गव्य है गाय का ही, दूसरा दूध है वो गाय के समान नहीं है, दूध है दही है घी है, ऐसे महिमा तो दही भैंस का अच्छा माना जाता है, घी गाय का अच्छा माना जाता है, दूध पेड़ का माना जाता है, छाछ बकरी की मानी जाती है, ऐसे कहते हैं, परंतु जो पवित्रता है और भीतर जो सात्विक बल है वो बल गाय में है, वो किसी में नहीं है। भैंसा होता है तो उसमें बल ज्यादा होता है, तो भैंस के दूध में घी ज्यादा होता है, और जो भैंसा है और एक तरफ बैल है उनको आपस में लड़ाया जाए तो भैंसा मार दे तो बलवान होता है, और दोनों गाड़ी में जोड़ दिया जाए तो चलाया जाए तो भैंसा जीव बिगा दे नहीं चल सके, बैल थाका मांगा भी चले खूब अच्छी तरह से, कारण उसमें बल सात्विक बल है, ये एक राक्षसी आसुरी एक पासव बल है ये बल में, किंतु सात्विक बल है। ऋषि मुनियों ने गवों का दूध पीकर घी खा करके उन्होंने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की, बड़ी बड़ी शास्त्र लिख दी, आजकल उन शास्त्रों के अध्ययन करने में भी समय कम है, उतनी बुद्धि नहीं, ऐसे ऐसे शास्त्र लिख दिए, वो बुद्धि सब गौ माता से प्राप्त हुई। प्रत्येक हम देखते हैं मोटर में काम करता तो चलते हैं तो वो हॉर्न देते हैं, भूखा बजाते हैं, तो गाय होती तो दूर से धीरे धीरे अलग चल जाएगी, भैंस होकर जाइएगी बड़े ऊपर आ जाओ भाई, क्या है अक्ल नहीं। आज भैंस के दूध का आदर ज्यादा, बम्बई में ही देखा हुआ दूध डेयरी फार्म जिसमें भैंसा ही भैंसा पाली जाती है, अरे भैंसों का ही दूध वितरण होता है तो बुद्धि वैसी पैदा होगी, गायों की जो बात है वो तो बहुत ही विलक्षण बड़ी सात्विकता है, परंतु बात यह है कि समानशील अध्यक्ष कि हम सात्विक पुरुष ही गाय की महिमा को जाने, राजसी और तामसी पुरुष है वो गाय की महिमा को नहीं जानते, वो गाय खा जाए जानते नहीं उसकी महिमा, नृत्य गुण प्रदर्शन सतम सदा निंदित नाते आश्रित हो, जिसका गुण नहीं जाने उसकी निंदा करता, तो गोवत्या होती तो यह बड़ा भारी दुर्भाग्य है, बड़ा भारी पतन है, परंतु किसके कारण लोग सुनने वाले नहीं, सुने कौन है, अपनी बुद्धि हो तो बुद्धि वो मनोरवन हो, ऐसी बात हो गई है जिन्होंने ऐसे समय गौ रक्षा का महात्म बहुत विशेष है, सदा ही गौ पालने का तो महात्म था ही, हम विचार कर देंगे तो अर्थ धर्म का मुख्य चारों पुरुषार्थ द्वार में से दो हैं, पालन किया जाए गाय का इसमें धन की प्राप्ति भी कम नहीं होती, ये उपेक्षा कर दी है आज किसी गोरख वाणी जब वैसे कर्म स्वभाव जब जो वाणिज्य को एक ही अपराया खेती को और गाय को छोड़ दिया, खेती और गाय ये बड़े संबंधी है साथ में रहने वाले है, तो व्यापार को लेकर धन में लग गए, परंतु सब उद्देश्य होती है गाय, गायों का पालन किया जाए, गायों का दूध बढ़ाया जाए, उनका इसकी वंश बढ़ाया जाए, शुद्ध किया जाए, वो अंग में बहुत सी बातें लगी है हमारे शास्त्रों में, उन बातों के अनुसार गौओं का पालन किया जाए तो गौओं से धन पैदा कम नहीं होगा, ये बात है, इसमें जरा देरी मिलती है, गायों का पालन किया जाए, गाय एक दो तीन पीढ़ी हो गई बकरी होगी उस बच्ची को खूब माँ का दूध पिलाया जाए, तो दूध पिएगी बच्ची तो उस बच्चे का अगर वो गाय पड़ेगी दूध ज्यादा होगा, ऐसे दूध का अधिक अधिक उपार्जन कैसे हो कि बच्चा ऐसे पाले जाए। अभी जैसे अकाल पड़ा है उस समय में बछड़ियों की विशेष रक्षा करनी चाहिए। रात्रि गाय की रक्षा मत करो, ऐसा नहीं बछड़ियां पाली जाए। तो बछड़ियां लेकर पाली जाएगी तो काल में बची हुई गाय होती है बछड़ियां होती है अगर बहुत अनुमति बढ़िया उनका आदर्श बढ़िया चलता है और वो बछड़ियां दूध देर वो दूध देर दे फिर पैदा और फिर अभी ब्याह उनकी फिर बछड़ियां और उनके जो फिर दूध पिलाया जाए जाते तो तीन पीढ़ी चार पीढ़ी में बहुत ज्यादा दूध देने वाली गाय हो जाए। पहले थोड़ी सी मन पड़ती तो पहले मन पड़ती कुछ अच्छा होता है किसको गीता में सात्विक गुण का यत डगरे विष्णु परिणाम अनुजो गुण तत्व सात्विक गुण क्यों तो आत्मबुद्धि प्रसाद जन जैसे सूर्य की छाया होती है तो बहुत लंबी होती है पर होते होते सब खत्म हो जाती है। शाम की छाया होती है नित्य पूर्वार्ध परार्ध बिना तो वह प्रयाग में छाया होती है वो छाया बहुत लंबी होते 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 सब छाया ही हो जाती काम रहता ही नहीं सब छाया हो जाती। इस तरह से वो थोड़ी होती है फिर बढ़ती बहुत। ऐसे गायों की रक्षा करने से धन भी पैदा कम नहीं होता है। दूसरा धन की बात तो क्या है लोगों की आशीर्वाद से बहुत काम होता है। भूमि दान के विषय में प्रकरण आया है गाय दस इतनी दान इतनी जमीन भी दान दी जाए गाय उसको बैठ जाए। आपने देखा होगा गाय बैठती है बैठ करके फूंक आ जाती ऐसे स्वास्थ्य होती है उस श्वास में इतनी शक्ति अनंत जन्मों की पाप न हो सब गाय में संपूर्ण देवता है जितने देवता सभी से उस गाय में निवास कर सकते और ब्रह्मषि जैसे ऋषि आपने सुनाई गायों से बने गायों की कोई भारी महिमा तो गायों में सब शक्ति भरी हुई है परंतु गिनती की सेवा करने से तत्काल आप देखो तो एक गाय एक पशु क्यों दिखता परंतु इसमें बहुत सार बढ़ा हुआ तो इनकी सेवा करने से संपूर्ण देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारी जो वर्षा होती है इसके वर्षा से ही हम जीते हैं। अन्नाद भवंति भूतानी पर्जन्याद अन्न संगो अन्न से सब जीते हैं। अन्न का मतलब यहाँ केवल गेहूं के ना जो बाजरा ही नहीं है जो खाया जाए वो सब अन्न होता है। अन्न प्राण में रहती है अन्न बनता है तो प्राण धारण करने की शक्ति है ना वो अन्न में तो अन्न मात्र वर्षा में होता है। अरे मिट्टी खाने वाले कीड़े अलसिया देखा मिट्टी खाता है तो मिट्टी खाने वाले भी जंतु होते हैं तो वर्षा होने से उनको मिट्टी मिलती है खाने को पसीने से पैदा होने वाले भी पानी से पैदा होते हैं। मतलब कि जितने जंतु मात्र है उनका सबका संबंध वर्षा में है और वर्षा होती है यज्ञ से याद होती वर्जन में और यज्ञ होता है वो गाय के घी से होता है तो भैंस और बकरी भेड़ की घी से यज्ञ नहीं होता तो यज्ञ में गाय का घी चाहिए गाय का छाना हो और गाय का घी होम दिया जाए क्षमता दूसरी भी पहले अधिक होती है तो वे लेकर के होम किया जाए तो बड़ा भारी बात में है तो गाय के घी में वो शक्ति है और लोग प्रार्थना संग्रह आदित्य उपदेश करे आदित्य जायते विस्तृत विस्तृत अन्न कल्याण जितना होम किया जाए उससे सूर्य भगवान की किरणों को शक्ति मिलती सूर्य जो सर्वे वर्षा करता है सब वर्षा सूर्य भगवान से होगी। सूर्य है ना ये सबको आरोग्य देता है सबका जीवन देता है उस सूर्य को जीवन देने वाला यज्ञ होता है और यज्ञ को दया देने वाली होती गाय। इस बात गीता ने भी जान ओम तो सुनो ब्राह्मण सुन ब्राह्मण तीन ब्राह्मणा तीन वेदास्त यज्ञात वेद ब्राह्मण वेद तीन परमात्मा से तो वेद प्रगत हुए तो विधि बताने वाले और गाय है जो यज्ञ की सामग्री देने वाली और ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान करने वाले ये परमात्मा से प्रकट हुए। इस बात से कहीं पूर्ति न हो किसी का नाम ले इस बात ओम तो सब कहते हैं पढ़ते हैं तो और वेदी जाता हरि ओम ऐसे करके ही मंत्रों को उच्चारण होता है और प्रणव को सबसे मुख्य माना है त्रिचा है, गाय है, ये सांड माना गया, ऐसे संपूर्ण मृदाएं फलवती होती सकाम निष्काम सभी, जिसमें सकाम में तो उनकी मुख्यता मानी गई, सत की निष्कामना मुख्य मानी गई और सत है तो परमात्मा स्वरूप है ही। इस वास्ते सब में खास गाय है, तो गाय में वेद की विधि क्या करेगी और ब्राह्मण भी क्या करेंगे, भाई सामग्री नहीं क्या होगा, और सामग्री होने पर कम जानने वाले ब्राह्मण भी काम करेंगे, वेदों का ना पढ़ा हो थोड़ा पढ़ा तो काम करेंगे, आउट इधर सुगंधि होगी, कम से कम 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 सुगंधि तो होगी ही दुनिया में, वायुमंडल दूषित होगा ही, और मंत्रों में सिद्ध किया जाए बड़ी भारी उम्र शक्ति अनंत शक्ति। इस तरह से गायों की महिमा जितनी गाय जाए उतनी छोड़ तो ये अर्थ देने वाली है, धर्म का अनुष्ठान किया जाए तो गाय है ही, बेहतरीन से पार करने वाली गाय है, और गोदा आंका जाता है, गवाह दान दी जाती है, तो मरने वाले माइकों का भी कल्याण होता है और सबको बढ़ देती गाय। माँ की बात कही तो मेरे को याद आ गई थी कि गाय है हमारी माँ है, और हमारी माँ की भी माँ है और बाप की भी माँ है, और माँ के बाप की भी माँ है और बाप के बाप की भी माँ है, तो दादी कहे नानी कहे परदादी कहे परदादी ये क्या है, सब कुछ है, तुम सब ही पहले दूध पीते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, रोग हो जाता है तो दूध पीते हैं, मरणासन्न हो तो उसमें गाय का दही दे दो, वो जाते हुए वो गाय का दूध दही होता है पवित्र, जिससे कल्याण हो जाए जीव का, गोमूत्र से कल्याण हो जाए, तो ये सबकी माँ परंपरा से है कि माँ को दादी को और दादी को नानी को दादा को परदादी को सबको शक्ति देने वाली माँ है, तो ये सबकी माता है, इस बार की गौ माता है, तो देखते ही महाराज नतमस्त हो जाए। मनुष्यों की बड़ी महिमा गाई गई, देवताओं की और दुनिया में सबकी महिमा गाई गई, परंतु गोबर और गोमूत्र पवित्र होता है, जिनको मैला और मूत्र कह नहीं सकते शब्द से, और सबका मैला होता है, बस पवित्रता होती है मूत्र होता है, और गऊ का गोमूत्र और गोबर महाराज महान पवित्र होता है, घर में अपवित्रता आया तो गोबर से पवित्र करो, गंगा जल लाग रहो गंगा जल समान गौमूत्र माना गया है, क्योंकि गाय से जब सृष्टि करी गई है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी तो सब सृष्टि से भगवान बड़े खुश हुए, मनुष्य बड़े खुश हुए और गाय से बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, तो देवता पहले से गए, देवता के भी ठीक है, गाय की बहुत प्रसन्न है, तो गाय के शरीर में जाकर निवास किया, देवताओं के तुम गऊ के निवास करो, तो गऊ में निवास किया तो पाताल आदि में कुआ में बैठे, फिर स्वप्न देखे समुद्र धनों में आकर बैठे, चंद्रमा और सूर्य नेत्रों में आकर बैठे, अश्विनी कुमार आकर के अब नासिका में बैठे, सब शरीर में देवता आकर 33 को बैठ गए, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी और ये बड़ी है ना महालक्ष्मी है गंगा जी है बड़ी, तो बड़े होते हैं वो गाड़ी पर भी देरी से आया सीट उनकी रहती है, कोई समझे हमारे को भी ले गाड़ी, तो ये पीछे गुजार से पीछे पहुंची, तो पीछे पहुंच करके और गंगा जी ने कहा हमारे लिए गए, तो जगह तो सारा सब रुकी हुई है, कहते तो स्थान तो हमें मिलना चाहिए, सर गोमूत्र में आकर रह सकती, तो गोमूत्र में गंगा जी का निवास है, लक्ष्मी जी आएगी हमारे को जगह मिलेगा, जगह सब रुकी हुई है सर, तो कहा कृष्ण में रहे गोबर में रहो, गोबर में लक्ष्मी का निवास, इस बात के भले घराने की बहनों माताएं अपने गायों का गोबर ले जाने नहीं देती, अपने अपना गोट हो बहुत सारा होती अपने घर की गाय, वो गऊ घर की मालकिन गोबर दे सकती है, कोई उठा कर ले जा तो कड़े होती थी, पर लड़ाई होती आज नहीं जानता कोई पता नहीं है, पर पुरानी बातें ऐसी माताओं में थी कि हमारे गोबर लेगी लक्ष्मी लेगी हमारी, देकर तो दे दे हम ले जाओ, पर तो ऐसी कोई नहीं होती, गोबर उठाए घर का आदमी घर की महारान जो मालिक है वो हमारी लक्ष्मी है, उनका नाम लक्ष्मी आज भी है, इन गांव वालों को पूछो रात होती है ना उसको लक्ष्मी कहते लक्ष्मी, आप खड़ा निकालते हैं तो उसको गाटा गा करके माद बनाते हैं ना, उसके ऊपर भी राग की राग रेख लगाते हैं, वो लिखमी लाओ लिखमी, जो कोई धान श्यारे नहीं रक्षा हो जाए तो उस रक्षा भी करती है गौ माता, जो गोबर का छाना का वो बनता है राग, तो वो लिखमी होती है, लिखमी के अभी नहीं बोलते हैं। अरे यार बाहर लड़ने का तो पहले श्याव पूजा नहीं होता है, गौ का गोबर लाकर शक्ति रख करके वहाँ पूजन होता है, गोवर्धन पूजा तो गोवर्धन है, वो गोबर धन है, गोवर्धन गोवर्धन है इधर, फिर गोवर्धन है, फिर उनको पूजन होगा तो गौवा है, लेकिन क्या बताओ गोबर की गोमूत्र की मैं माँ गाओ तो बड़ी भारी है इनकी आयुर्वेद के हम देखो तो कहेंगे कतरे गवा मूत्र गाय के मूत्र में देने से वो जहर शुद्ध हो जाते हैं, जहर विष होते हैं, विष साफ हो जाते हैं, महान पवित्रता आ जाती, दवाइयों में शक्ति आ जाती, रोगों को दूर करने की, आरोग्य देने की, तो कितनी महिमा गाओ उतनी थोड़ी। भगवान ने तो स्वयं अवतार लिया तो वहां पर वसुदेव जी के यहाँ अवतार लेकर नंद जी के यहाँ रहे और नंद जी के यहाँ रह करके गायों का पालन किया, छोटे और चंपट देता है, फिर गायों को चलाया, तो मशोदा मैया ने क्या लगाया तू जूती पहन ले पैर चलेगा तो कोटा कहा जुड़ जाएगा, जमीन तभी हो जाएगी, यकीन है मेरी लोगों के लिए जूती बना दे, मेरे लिए बना दे, और गायों के लिए कितनी कार जूती बना, तो गौ के बारे में बिना जूती चले, अरे मैं जूती पर नहीं करूंगा, तो हमारी गाय तो ऐसी चलती बिना जूती, तो बोलो था मैया कहते भोला है समझ क्या नहीं, कैसी जूती होती तो मैं कैसे पहन लू, हमारी गौ माता तो चलेगी हो ही और मैं जूती पहन कर लू, तो स्वयं महाराज गौओं को चढ़ाती, आज गोपाष्टमी के दिन भी वहां मेला लगता है, अब ले जाओ राम कृष्ण चलते हैं ये गाऊ भैया दोनों ही गौ उतरा ले जाते हैं, बुलाते इसी दिन आती गाय आज भी होगा, और उनको माताएं आती गोली को ले जाती है, बहुत बड़ा भारी उत्सव होता है हमारे लिए, गौओं की बात बहुत विलक्षण है, महान पवित्र बात है, उनका नाम लेते ही पवित्र हो जाए, अरे भाई अपने यहाँ शिवराज महाराज थे बड़े साधु ग्रंथ एकांत रहने वाले, उन्होंने कहा महाराज आपका नाम देते गौशाला में, अरे हमारा नाम ठीक नहीं रहा भगवान का नाम होना चाहिए, तो भाई आपका नाम दे देते गौशाला ठीक चलेगी, हमारे बिल्कुल रहने दो नहीं सही हमारे त्याग जाने दो, गौ की सेवा हो जाए तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, संत स्वीकार करे तो गया व्यवहार जो स्वीकार करेंगे वो थे, और 12 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया अर्जुन ने गायों के लिए, नारद जी महाराज आए कहा तुम पांच पति हो एक द्रौपदी है तो आप सुन लो, जाकर वे मर गए थे इस बार तो ये ठीक नहीं है, तो क्या क्या वो दिन दे दिए अलग अलग, तो पांच भाइयों की अलग अलग बारी रहती उसमें द्रौपदी आ रहे थे, तो नियम था एक बारी की बारी बारी और दूसरा चला जा तो 12 वर्ष वनवास, एक दिन ऋषि महाराज की बारी थी और किसी ब्राह्मण की गौ लेकर तू यहाँ से जाकू, उसने जाकर पुकार करी कि मेरे गौ ले जा रहे हैं, अर्जुन ने कहा भाई मेरे हिंदुमान को रह गया महल में, अरे कुछ ऋषि महाराज मैं कहे जाऊं तो मेरी गाय ले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो गए उस समय वो टोकर खेल रहे थे, ऋषि महाराज को दूध का बड़ा शौक बता दीजिए दूध पाए तो खेल रहे थे, वो धनुष मान दे रहा लोगों को दिखा दिया सब दे करके, फिर ऋषि महाराज आज नमस्कार किया तो महाराज ने हुकुम हो गया मैं परिवार में जाता हूँ, तो क्यों मैंने नियम भंग किया तो पहन ले गया, वो तो गौओं के ले गया, धर्म का पालन बहाना बजी नहीं मानता, धर्म का पालन तो वही बहाना नहीं, वो तो ठीक नियम हो गया नहीं हुई है, 12 वर्ष वनवास में है गौओं की रक्षा के लिए, 13 वर्ष था वो वनवास हुआ, उन्हें 12 वर्ष वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास, उसमें अगर प्रगट हो जाए फिर 12 वर्ष का वनवास, तो कैसे प्रगट हो तो गायन ले ली गई वहां की, अब गौओं के लिए प्रगट हो जाए तो वहां प्रगट हो जाए तो परवाह नहीं, फिर 12 वर्ष हो जाए तो गायों के लिए, तो ये विराट परवाह की बातें आप लोग जानते हो, बहुत ही सुनी हुई महाभारत की बातें, तो गौओं के लिए कितने कृष्ण ऋषि उन्होंने कष्ट सहे। महाराज ये वंश चलता है ना तो सूर्य वंश है, तो सूर्य वंश में रघुवंश कहलाता है, रघु का वंश। रघु के पिता दिलीप थे, दिलीप वंश को ही कहता। रघुवंश क्यों कहते हैं कि रघु से ही वंश चला, क्योंकि वंश समाप्त हो गया था, श्राप हो गया था, काम धेन होगा, दिलीप के संतान नहीं हुआ। तो विशेष जी से पूछा तो भाई गौ का साहब है, गौ को राजी करो, वो तो अभी यहाँ है नहीं, उसकी नंदनी है बकरी, इसको खुश करो। तो नंदनी को खुश करने के लिए महाराजा दिलीप और सुदक्षिणा रानी, राजा रानी दोनों जाकर के गाय की सेवा में लग गए। नौकर साहब उनको पहुंच गए, उनसे सेवा करवा लेते, पर नौकर को रखा ही नहीं, जो है दो ही बार जाकर के अपने हाथों से ही गाय की सेवा कर। महारानी या महाराज सुदक्षिणा हाथों से गोबर थापती है, गोबर उठाती है, नई बालू लाके बिछा देती है, गाय का स्थान ठीक ठाक करती है, गौशाला को ठीक करती है, दीपक कर देती है, सुबह चंदन आदि से पूजन करके पुष्प माला पहना करके फिर वहां से गौ को प्रस्थान करके पहुंचाने को जाती है। महाराज दिलीप दिन भर जाकर के गौ की सेवा करते हैं। सीधा उत्तर का प्रयास आम उसी मासन बंद धीरे, वो चले तो वो चलता है, गाय खड़े तो खड़े जाता है। अरे जलाभिलाषी जल माता नाम, जल बा पिए तो महाराज जल की इच्छा करता है राजा, तो मैं भी जल पी लू, फिर पहले नहीं आगे कल जाकर छाये होता हम भूख लगे, छाया की तरह राजा की सेवा करता है। सेवा करते करते सप्तक जति उसकी गुणान करती है, दिनान की करती है, 21 दिन हो गए। तो गौ ने विचार किया नंदनी माखा भी कैसी सेवा करता है, तो उसने परीक्षा करना चाहा, पर्वत की गुफा में जाने लगी, भीतर से सिंह आया सफेद सिंह, ये गाय गोरी गोरी गाय, आज 16 महीने पहले हमने गोरी गाय लिया, गोरी गाय तो मेरा सिंह आया भीतर से आक्रमण कर लिया। राजा थोड़ा सा पर्वत की तरफ देख रहे इतने में सिंह ने आक्रमण कर लिया, देखा तो मानो चलाया हुआ था ही तब बाढ़ ने संदार करे, ये आदर से रह गया, ये आदर थी जड़ी के चंद्र रूपी समय में, वो तो वही जड़ हो गया। मैं चित्राज पिता रंग जवा बतस्ते दिखाए कालिदास ने, जैसे चित्र मान गए वो चित्र वैसे ही रहे, जो चित्र की तरह ही खड़ा रह गया, बांध टूट गई, हाथ ऐसे हो तो बांध कटा छूटे। तब वो सिंह बोला, तू समझता है कि मैं बांध नहीं चलाता, चला नहीं सकता, तू चलाकर मेरे करेगी क्या? अरे पर्वत बड़ा देव होता है वायु का, तो वो सब को वृक्षों को उखाड़ देता है, सुरक्षित रोड से मार्ग से क्या पर्वत को उठा देगा वायु? ऐसे मैं क्या बजा चलता है, तो मैं कौन हूं, तू समझता है कुमोदर मेरा नाम है, निकुल मेरा मित्र हूँ, मैं सवित्र हूँ, और अमुम बड़ा पूरा प्रसिद्ध देव उदारू पुत्री देना यो हेम कुंभ सरित्रता नाम चंद्र के मातु पर काम रहते सामने देवता है देवदारू का वृक्ष। इस वृक्ष को माता पार्वती ने पुत्र की तरह पालन किया है, ऐसे जो कार्तिकेय को और गणेश जी को दूध पिलाया, ऐसे अपना दूध सिद्ध किया है इसको, ऐसे इसको पालन किया है। तो किसी बनेले हाथी ने आकर के खुजले कहे जैसे महाराज त्वचा उतर गई, भगवान शंकर आए पार्वती ने देखा तो जैसे कोई बेटा ने अपने कार्तिकेय घाव लग गया, माँ को दुख हुआ, ऐसा दुख हुआ, तो क्या तुम यही रहो, मैं भगवान शंकर का दास हूँ, वो नंदीश्वर पर चलते हैं तो ऊंचा होता नंदी, इस वजह से मेरे चरणों पर मेरे पीठ पर चरण कर भगवान शंकर चलते, उसे पूछ पृष्ठ में पवित्र, हाँ उस वजह से मेरा पवित्र हुआ वह शरीर है, इस पर कोई कर नहीं चलता प्रहार मेरे, इस वजह से कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बिगाड़ नहीं सकता, ऐसे मैं हूँ। और मेरे को कहा अंकागत सत्व यहाँ पास में आ गया, बस उसे निर्वाह करना, खाने के लिए और कहीं मत जाना, आज भाई कई दिनों से पालना चलता हूँ, उपवास करते दिन हो गए, आज गाय आज बस मेरा भोजन है, इस बार में भोजन करूंगा मैं, तू जाओ तुम निवर्त आए लग जा। કરે ગાય કે રક્ષા નહીં કે અસત્ય રક્ષમ મતલબ જે સત્ય વિધાન થયું હતું જે રક્ષા કરે નહીં સત્તા એ જ જે રક્ષા ન કરે છે ત્યારે તે આપ બંધ લગા લે ચાલતા નહીં કે વાત તું ચાહો કોઈ શરમ કી બાત નહીં હૈ કે તમે ભોજન કરું વાર ભી નું પરવાર નહીં તું તો પરાધી નો જાણતે હો કે જો રક્ષા કરના મેરા ઘર મેં તો ક્યાં દૃષ્ટિ રક્ષા કરના મેરા ઘર નહીં હૈ મેરા ઘર મેં ઇસ વાત મેં નહીં છોડુંગા આજ પારણા કરૂંગા તો ઉસને કહા કે તું મેરે બોલે દોનો કામ હો જાયેગા મેરે પ્રાણ ગલે જાયેંગે ફિર પારણા હો જાયેગા મેરા કામ બન જાયેગા કામ ક્યાં બનેગા પ્રતિજ્ઞા બન જાયેગી સચિનો થોડા વિચાર પુત્ર કે લીએ ગૌ કી સેવા કરતા હતા સકામ ભાવ છે મનુષ્ય કો કર્તવ્ય કા પાલન કરના ચાહીએ કર્તવ્ય બુદ્ધિ છે સકામ પુરુષ કે લીએ યે બાત બતાઈ અબ અપને શરીર કો દે દેતા હૈ સિંહ ખા જાતા હૈ બેટા કિસકે હોગા પરંતુ કર્તવ્ય કા પાલન કરના હૈ હોતા હૈ બેટા ન હો ઉસને કહા બસ જો સિંહ સર કહેતા હૈ તું વિચાર મૂઢા પરિભાષી એક હાથ પત્ર પ્રમોદ્યા એક ગૌ કા ઉદ્ધાર હોગા જીવન પુનઃ સત્યનાથ પિતે ઉપાસ જીતા રહેગા તો પ્રજા કા પાલન કરેગા મરણે જે ક્યા એક ગાય બચી આયેગી દોનો વિચાર તો સહી ક્યા કર રહા અસ્પતાલ ગયો બડે બરા સંવાદ હુઆ તો બહુ સંવાદ અંત મેં સિંહને કહા કે દેખો શેષ પુરુષ હોતે સંબંધ માધારણ પૂરું મારું કે આપસ મેં બાતચીત હોને સે મિત્રતા હો જાતી હૈ સંબંધ હો જાતા હૈ આજ જંગલ મેં તેરી ઓર મેરી ઇતની બાતે હોઈ અબ તું મેરા મિત્ર મેં તેરા મિત્ર હું મોટી બાત વો ચાલના કામ નહીં તેરા ઇસ વાત મેરી બાત